4th July
1978. Om Yato Yata Sami Hase Tato No Abhayam Kuru Shannah Kuru Prajabhyo Abhayam Pashubhya. इस मंत्र में प्रार्थना की गई है ओम यतो यता समी हसे। हे सर्वरक्षक भगवान, हम यतो यता जिस प्रकार से, जिस तौर से, जिस तरफ से किसी भी प्रकार की चेष्टा या कर्म करें, कोई भी व्यवहार करें, कार्य करें, उसमें हमें सब प्रकार से निर्भयता प्राप्त हो, या आप निर्भय हमें बनाए या अभय दान करें। शन्नह कुरु प्रजाभ्यो, और संसार के जो ये मनुष्य मात्र हैं, इन सब के लिए आप शांति की वर्षा करें, इन सब को शांति प्रदान करें, और या मुझे प्रजा से भी निर्भयता प्राप्त हो, क्योंकि मनुष्य भी मनुष्य का दुश्मन होता है, तो इन सब से मुझे मनुष्य मात्र से अभय प्रदान हो, अभयता प्राप्त हो, और पशु पक्षी आदि जितने भी प्राणी हैं सब से मैं निर्भय होकर के संसार में विचरूं, या हम सब से निर्भय होकर के संसार में रहें। इस प्रकार की प्रार्थना इस मंत्र में की है। सायंकाल के प्रवचन में तीसरे प्रकार के जल का वर्णन चल रहा था, जो जिह्वा के अंदर वर्तमान रहता प्रधान रूप से, और ये जिह्वा जो इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रियों में है, सबसे प्रधान है। इसी प्रकार और भी इंद्रिय प्रधान हैं, परंतु इनके स्वाभाविक धर्मों का के निरोध में मैंने कल असमर्थता प्रकट की थी। कृष्णचंद्र जी महाराज ने इसके विषय में बहुत अच्छा एक श्लोक दिया है। स्वयं स्वयं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं ज्ञानतिं भूतानि निग्रहा किं करिष्यति। कि जितने भी प्राणी मात्र हैं, मनुष्य मात्र, जीव मात्र हैं, स्वयं स्वयं चेष्टते स्वस्या प्रकृते, जैसी जैसी जिसकी प्रकृति और स्वभाव होता है इंद्रियों का, जैसा जैसा इंद्रियों का स्वभाव होता है वैसी वैसी ये चेष्टाएं करती हैं, या जैसी प्रकृति मनुष्य की होती है। प्रकृति से अभिप्राय यहां परंपरा के संस्कार, उन संस्कारों से जो स्वभाव बनता है, तो जैसी उसकी प्रकृति स्वभाव हो जाता है, प्रकृति ज्ञानवान की कहा है। मूर्खों की तो बात ही क्या, ज्ञानी भी कहते निग्रहा किं करिष्यति, वहां निरोध कुछ नहीं कर सकेगा, निरोध की कोई पेश नहीं जाती। मैंने तो पहले युवा अवस्था में बड़ा समझा करता था, सब को संसार को विजय कर लूंगा, शरीर को भी और इंद्रियों को भी और मन को भी, पर मैंने तो इतनी साधनाएं करते करते जब तक आशा वाशा बनी रही, शायद अब भी हो जाए, इस साल हो जाएगी, अगले साल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, सीधे मोक्ष में चला जाऊंगा, देखा वहीं का वहीं बैठा हुआ। और एक प्रकार से इनके निरोध में निराशता प्रकट हो गई कि स्वभाव का निरोध कैसे किया जा सकता है। ये तो बातें पीछे आने के समझ में आई, जब अज्ञानता थी तब तो बड़ी आशा लेके बैठे रहे, जब कुछ समझ आई यथार्थ ज्ञान की बात समझ में आई, तो फिर अब समझ में आई इनका तो स्वभाव ही है, स्वभाव को का विनाश नहीं होता, स्वभाव रहता ही है, जैसे जिसका जो स्वभाव होता है, क्योंकि ये अनादिकाल से बना आ रहा है, इनकी प्रकृति है, प्रकृति भी स्वभाव को ही कहते हैं। इनका नासिका है, गंध को बतलाएगी, कोई भी गंध आ जाए सामने, अगर नहीं बतलाती है तो पागलों की शायद ना बतलाए, क्योंकि वहां बुद्धि काम नहीं करती है। तो जब तक है बुद्धि काम करती है मस्तिष्क में इंद्रियों के साथ, क्योंकि इंद्रिय नियोजित तो हो जाती है, स्वाभाविक की धर्म है इनका रूप को देखना। अब जैसे मेरी आंखें आपको देख रही हैं, पर रूप के जो भेदों का ज्ञान है ये बुद्धि विवेचना करती है। तो इसलिए रूप को तो नेत्र ने दिखाना ही है और बुद्धि ने विवेचना भी बतलानी है, उसका भेद ज्ञान भी कराना है, उस पदार्थ का यथार्थ ज्ञान भी कराना है, उसके सत्य सत्य का निर्णय भी करना है। ये सब बुद्धि के ही धर्म होंगे। तो इसलिए बुद्धि भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं कर सकती और इंद्रिय भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं कर सकता। पतंजल ने भी शायद भांग पी के सूत्र लिखा होगा यो आचित वृत्ति। जीवन में अब पहले तो बड़ी आशा लगी रहती थी वृत्ति निरोध की, पर अब ज्यों ज्यों विज्ञान में कुछ प्रौढ़ता सी आई है, कुछ समझ सी आई है, मरने के किनारे के बात भी जाते तब वो तो मरने के किनारे भी नहीं आती, पर अब कुछ समझ आई है तो अब सब तरफ से विवशी हो गया। बुद्धि की तरफ से भी, मन की तरफ से भी, इंद्रियों की तरफ से भी, न शरीर पर अधिकार है और न इंद्रियों पर अधिकार है और न मन और बुद्धि पर अधिकार है। कोई भी, मैं अपनी कह रहा हूं तो मैं नहीं कहता, कोई भी अवस्था ऐसी नहीं आती कि इन सब पर अधिकार हो। उनमें सपन का अभाव नहीं होता, सपन भी विवश होकर के आता है, पता नहीं कहां से आ जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब सपन न आते हो। तो जागृत में भी वृत्तियां कार्य करती रहती है, अंतःकरण कार्य करता रहता है, सपन स्मृति नाम की वृत्ति है तो वो भी स्मरण होता रहता है। निद्रा को भी वृत्ति माना है क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव सा प्रतीत होता है और उठने के बाद सुख और दुख का अनुमान करता है, उस काल में सुख और दुख की प्रतीति होती है। समाधि की अवस्था में भी विज्ञान जब प्राप्त करता है वृत्तियां ही काम करती रहती है, विज्ञान का अध्ययन, विज्ञान की खोज, विज्ञान का साक्षात्कार, आत्मा की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति, सब वृत्ति आत्मा की है। तो भाई मैं तो दावे से कहता हूं कि ये सूत्र बिल्कुल गलत लिखा। जैसे संसार में स्वभाव ही प्रधान हो, जैसे स्वाभाविक धर्म जिनको कहते हैं, जैसे अग्नि में दाह प्रकाश, वायु में स्पर्श आदि के धर्म स्वाभाविक हैं, ऐसे ही इंद्रियों का विषयों की ओर चलना दौड़ना स्वाभाविक है। मन आदि का भी इनके साथ मिलकर के कार्य करना स्वाभाविक धर्म है, संकल्प और विकल्प। बुद्धि के भी स्वाभाविक धर्म है सत्य असत्य का निर्णय करना या नहीं करना, इसमें भी इस प्रकार के धर्म स्वाभाविक है। हाँ, जरा साधना विशेष से स्वाभाविक धर्मों को धर्म प्रबल जाते हो, बजाय उनको कम करने की और प्रबल बन जाते। इन निरोध के लिए जो प्रयत्न विशेष है इसका कभी अभाव देखने में नहीं आता। जब ये प्रयत्न विशेष निरोध की अवस्था में भी बना रहता है, और निरोध सर्वथा अभाव होता ही नहीं निरोध का भी, तो इससे सिद्ध होता है कि जब स्वभाव, ये स्वाभाविक धर्म है, इनका अभाव नहीं, और स्वभाव से ही जगत चलता रहेगा, स्वभाव से ही आता रहेगा, स्वभाव से बंध होते रहेंगे, स्वभाव से मोक्ष होते रहेंगे, मोक्ष भी होते रहेंगे। जितनी देर तक परलय रहेगी। जब इन शरीरों का अभाव नहीं होगा, ये कारण में विलीन हो जाएंगे, तो उतने काल तक मोक्ष बना रहेगा। जब सृष्टि का सृजन, क्योंकि इसका भी स्वाभाविक धर्म है सृजन करना, तो ये भी अपने फिर उसी में लौट आएगी। ये मकान बना बनू का इस भूमि से ही हमने तैयार किया है, जल से, और जीर्ण शीर्ण होकर के इसी में भस्म साथ इस पृथ्वी और जल में चला जाएगा। आज एक दिया सलाई लगा दो, लकड़ी का मकान है उसका खत्म। इस मिट्टी से ही, भूमि से लकड़ी वकड़ी उपज कर इकट्ठी करके तैयार करके इसको जोड़ के बनाया था, और भस्म बन के उसी में चला जाएगा। तो ये बंद और मोक्ष भी स्वाभाविक ही हमें तो प्रतीत होते हैं, चलता रहेगा ये कार्यक्रम। चेतन का सन्निधान संबंध बना रहता है और इसमें परिणाम क्रम चलते रहते, इसी तरह चलता रहेगा सदा। बस हम इसके साथ में जैसे कुआं होता है, उसमें हल्क लगा होता है, उसमें टिंडे लगे हुए थे, पानी आता गिरता रहता, चलते रहते जब तक चेतन का संबंध इस प्रकृति के साथ में रहेगा, तब तक इसके स्वभाव काम करते रहेंगे। आना जाना, उत्पत्ति विनाश संकार स्वाभाविक ही होते रहेंगे तुम्हारे पवित्र। तो मैं तो अपने आप को इतनी साधना करके, इतने युवावस्था में जो बड़ी बड़ी साधनाएं करता था, धूप में तपता था, सर्दी में आप मुझे किसी अपराध विशेष से ले जा करके जेल में डाल देते हैं, वहां तप करना पड़ता है, उसको तो मैं दुख का हेतु समझता हूँ। अपनी मर्जी से मैं सूर्य के सामने बैठ करके तप करता था, उसको मैं आजादी समझता हूँ। केवल समझ का ही तो भेद है, वहां जेल में भी मुझे इस प्रकार की यातना थी, एक यातना आप मुझे दे रहे हैं, उसी वही यातना में अपने आप भोग रहा हूँ, उस यातना में सुख समझता हूँ, और अंत में देखा जाए वो सुख भी दुख का रूप सिद्ध होता, जैसे मेरे लिए हो रहा है। युवावस्था में सर वहां अमृतसर में नहरें हैं छोटी छोटी दो, शीतकाल के मौसम में यहाँ तक पानी में बैठ करके मैं गायत्री का जाप, इतना बेवकूफ था, तो यहाँ तक पानी में बैठ करके जाप किया करता था गायत्री का। और गांव के लोग गड्ढे वड्ढे चलाने वाले, ये क्या नाम, चोर चकार उधर से बहुत आया करते थे, वो हैरान हुआ करते थे, इस बाबा का दिमाग खराब हो गया, ऐसे क्या है ये इतनी सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में बैठ करके इसमें क्या करता है, बैठा कहता है इसको। एक तो कहता है ना, आज इसकी मत मारी गई है, आज तक किसी बुड्ढी के अड़िक के नहीं चढ़ा इसकी सब करनी। इसकी सब घर निकल जाती। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये तो दृष्टांत ये है, सब मूर्खता से ही मनुष्य शुरू से लेकर के मूर्खता को दूर करने का यत्न करता रहता सारा जीवन, पर वो मूर्खता दूर ही। तो जिनको तब समझता था इंद्रियों पर विजय पाऊंगा, शरीर पर विजय पाऊंगा, मन पर, वो अब परिणाम ताप संस्कार दुख में सर्वम विवेकी ना, वो सब अब दुखी साबित हो रहे, कोई भी फल उनका नहीं निकला। अगर फल निकलने वाली बात होती तो बस आए, न कोई बंद हो, न कोई शारीरिक दुख होता, न इंद्रियों के दुख होते, न सर। अब देखो, अब ऐसी अवस्था आ गई है, अभ्यास कराने को चित्त नहीं करता, इससे भी चित्त, चाहे थकावट शरीर की समझो, चाहे बंधन समझो, चाहे कुछ समझो, क्योंकि आयु भी काफी होगी, सी उम्र इतनी भी आयु हमारे परिवार में 55 साल से किसी की उम्र ज्यादा नहीं हुई, तो मैं तो 90 का बैठा हुआ हूँ। तो अब रिटायर होना चाहिए, मर के भी तो होना है, पर रिटायर होने का कोई साधन ही नजर नहीं आता। और बंधन, एक आश्रम बनाया, उसके बंधन दूसरा बनाया, अभी एक ये दो बच्चे हैं, इसके लड़के हैं पता नहीं कितने, अब उनको छोड़ करके ये यहाँ सुख समझ करके आन के बैठे, उस परिवार के दो बच्चों को भी बंधन का हेतु समझे बैठे देवेंद्र जी, तभी तो यहाँ नहीं वहीं बैठे रहते। अब जिसके जो इतने बच्चे बच्चियों को लेकर बैठा हो, वो कैसे आजाद हो सकता है भला। किसी ने अपने पैदा कर करके बंधन मान लिया, किसी ने इधर उधर से इकट्ठे करके बुला करके बंधन मान लिया। बंधन में तो दोनों ही बराबर है, कौन मुक्त हुआ? सोई अब जो जो निकलने की कोशिश करते हैं क्यों तो और जाल ज्यादा विस्तृत होते जाते। ये मनुष्य अपने आप ही अपने बंधन तैयार करता रहता जीवन भर और अपने आप ही उन्हें फंसता रहता है और फिर दूसरों को कहता और मुझे आकर छुटा दो। भला पूछो, वो तुम्हें बांधने आया था जो तुम्हें छुटा दे दे? मैं तुम्हें बांधने गया था जो मैं तुम्हें छुटा दूं? आप मुझे बांधने आए थे जो आप मुझे छुटा दे? ये मनुष्य स्वयं ही इस प्रकार के यत्न में लगा रहता है, अपने जाल, एक रेशम का कीड़ा होता है यहाँ अब तैयार करेंगे, अब पत्ते आए हुए शहतूत के जंगलों में, तो वो रेशम का कीड़ा पत्ते खा खा करके उसमें से धागा निकालता, अपने ऊपर ऐसे मंडता रहता है, अपने आप ही उसमें बंद करके सुषुप्त सा हो जाता है। और उस पर से तार निकालने के लिए फिर ये लोग पानी में, गर्म पानी में उबाल करके तब वो तार उतारते हैं। तो ये सारे कर्मों के जाल रूपी धागे बना बना के हम अपने ऊपर लपेट रहे और फिर हम अपने आप ही उसमें मृत्यु रूपी उसमें पड़ेंगे गर्म जल में, और फिर हमारे कर्मों के, इनके संस्कारों के धागे निकलेंगे और फिर परंपरा प्रकृति में जाएंगे और फिर लौटा लाएंगे। तो रेशम के कीड़े के समान स्थिति है संसार के अंदर, तो ये स्वाभाविक धर्म चल रहे हैं, कोई इनका निवारण नहीं। सब ऐसे गप्पे मार गए, मैं भी अब तक गप्पे ही मारता रहा हूं, अब कुछ समझ में आई है बात थोड़ी थोड़ी, अभी भी पूरी नहीं, अभी बहुत बातों में मूर्ख ही समझता हूं। या ये मेडिटेशन के लिए सावधान।